पहला, रमेश चंद्र शाह, कहीं नहीं है मरना। संस्मरण, क्या सचमुच वात्स्यायन जी एकाएक संस्मरण के विषय बन गए? किसी ने कहा है और ठीक ही कहा है कि सत्य जितना विचित्र होता है उतना विचित्र कोई मनगढ़ंत किस्सा भी नहीं हो सकता। अभी अभी तो वो यहाँ भोपाल में हमारे साथ थे। उनकी सबसे हाल की लिखी मरुस्थल श्रृंखला की कविताएं हमने उन्हीं के मुख से सुनी थी। खंड काव्य की आधुनिक संभावनाओं की चर्चा की थी। चित्रकार अमृतलाल वेगड़ के साथ मिलकर उन्हें नर्मदा यात्रा की योजना का खाका बनाते देखा था और भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार करते हुए हम सभी सहयोगी उपन्यास के उनके एक प्रयोग की याद करते हुए उसे नए सिरे से दोहराने के मंसूबे बांध रहे थे। अब यह बताइए, पहला अध्याय कौन लिखेगा? उन्होंने पूछा था। वह आवाज जो अभी मेरे कानों में गूंज ही रही है, क्या सचमुच मैं अब उसे कभी नहीं सुन सकूंगा? वह समूचा दिन और उसके पहले के 3 दिन किस कदर मेरी आंखों के सामने रील की तरह गुजर रहे हैं। कवि भारती का आयोजन संपन्न हो चुका था। भारतीय भाषाओं के 40 कवियों के काव्य पाठ के साथ साथ अज्ञेय के अपने विलक्षण काव्य पाठ और विलक्षण व्यक्तित्व की गहरी छाप अपने मन पर बिठाकर सारे अतिथि लौट चुके थे। कैसा लगा होगा उन सारे कवियों को यह समाचार सुनकर? उनमें से अधिकांश के लिए तो यह प्रथम और अंतिम साक्षात्कार ही था इस हिंदी कवि का। पहली अप्रैल की दोपहर, खाने की मेज पर पहले तो भारत पाक के बीच अभी हाल खेली गई क्रिकेट श्रृंखला की चर्चा चलती रही थी कि फिर शाहजहां को लेकर असाध्य आशावादी नवीन सागर और मेरे बीच खासी नोकझोंक चल पड़ी थी, जिसमें वात्स्यायन जी को बहुत मजा आ रहा था। बातचीत एक का एक खेल से खाने की ओर मुड़ गई और नवीन ने अपनी पाक कला के बारे में बढ़ चढ़कर दावे करने शुरू किए कि वात्स्यायन जी ने एकाएक हाथ उठा के धीरे से कहा, पहले यह तो याद कर लीजिए आज दिन कौन सा है, किस कदर प्रफुल्ल और विनोदपूर्ण मनोस्थिति में थे उस दिन वो। रात को उन्हें गाड़ी में बिठाकर जब मैंने उनसे विदा ली तो उन्होंने याद दिलाया कि गर्मी की छुट्टियों का कार्यक्रम मुझे जल्दी ही सूचित कर देना ताकि पहाड़ जाते हुए या तो दिल्ली से ही साथ चला जा सके या फिर मैं पहले भीमताल उनके पास कुछ दिन रुक कर ही अल्मोड़ा जाऊं। कितना मार्मिक और मेरे लिए कितना आनंदपूर्ण अंतर्विरोध था उनके इस आग्रह में। और अभी 1.5 महीने पहले उन्हीं के घर में उन्हीं के मुख से निकले इस वाक्य में कि मैं तो पहाड़ को अंतिम प्रणाम करके आ गया हूँ। मुझे याद है इलाजी और मैं दोनों ही स्तंभित रह गए थे उनके इस उद्गार से। इस संयोग को भी क्या कहूँ कि अज्ञेय जी ने से मेरी पहली भेंट पहाड़ पर ही हुई थी। वे कलमटिया यानी अल्मोड़ा में ठहरे हुए थे जहाँ तक मैं रोज ही टहलने जाया करता था। आजकल गर्मियों में अक्सर हिमालय के दर्शन नहीं होते, किंतु उस दिन उस शाम जाने कैसे वातावरण इतना निर्मल इतना प्रसन्न दिव्या सुविक्तावातः था कि यहाँ से वहाँ तक समूची हिमश्रृंखला जगमगा रही थी। मुझे याद है जब मैं उनसे विदा लेने गया तो फाटक तक मुझे छोड़ते हुए उन्होंने इस सहज सुलभ दृश्य के दिनों दिन दुर्लभ होते जाने पर उसके कारणभूत वनों के विनाश को लेकर टिप्पणी की थी। फिर मुस्कुराते हुए जोड़ा था, छोड़िए अभी तो जो है उसका आनंद लीजिए और भविष्य की चिंता कीजिए। अज्ञेय जी अक्सर अल्मोड़ा आते हैं यह मुझे मालूम था, किंतु अपने संकोची स्वभाव के चलते कभी उनसे भेंट नहीं हो पाई थी। उस बार भी न होती यदि एक निमित्त अचानक न उपस्थित हुआ होता। आंगन के पार द्वार को लेकर लिखे गए मेरे एक लेख का खग में छपना। मुझे रास्ते में रघुवंशी जी ने बताया कि अज्ञेय जी को वह आलोचना पसंद आई थी और उन्होंने उसके लेखक के बारे में जिज्ञासा प्रकट की थी। रघुवंश जी ने उसी सिलसिले में मुझसे कहा था कि देखो एक लेख लिख के रातों रात प्रसिद्ध हो जाना हर्ष का नहीं चिंता का विषय है, इसे हमारे साहित्यिक परिवेश की विपन्नता का सूचक समझना चाहिए। मैं वास्तव में इस चेतावनी को कभी नहीं भूला। ठीक उसी तरह जिस तरह त्रिशंकु की वह मन में गहरे बैठी बात कि हमें एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण करना है। अज्ञेय का यह संकल्प मेरे मन में पता नहीं कैसे आरंभ से ही कवि अज्ञेय और कथाकार अज्ञेय की ही पहचान से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहा है। जब मैंने उनके पास जाकर कहा कि रमेश चंद्र शाह आपको प्रणाम करता है तो वे चौंके और मुझे नाम दोहराना पड़ा। यह जानकर कि मैं अल्मोड़ा का ही रहने वाला हूँ उन्हें सुखद विस्मय हुआ। फिर वे बड़े सहज भाव से आसपास की जगहों के नाम और उन नामों के अर्थ पूछते हुए मेरी थाह से लेने लगे। बातों बातों में उन्होंने जता दिया कि पर्वतारोहण की कितनी समृद्ध शब्दावली कुमाऊनी में मौजूद है। फिर जब मैंने भोजन और उसके स्वादों से जुड़ी हुई अपनी बोली की शब्द संपदा का बखान किया तो अज्ञेय जी एकाएक उठे और भीतर से दोनों हाथों में बड़ी बड़ी तस्तरियाँ उठाए प्रकट हुए। एक में नमकीन का पहाड़ रखा था तो दूसरे में मिठाइयों का। मेरे मुँह से निकला इतना सारा, बोले खाइए। मैं इस आग्रह का अक्षरशः पालन करता हुआ सचमुच ही सब साफ कर गया। अज्ञेय जी चाय की चुस्कियाँ लेते रहे और मेरी मुखरता झेलते रहे। घर लौटते हुए रास्ते में मुझे अपने घर अपने पर अचरज होता रहा कि कैसे पहली बार में ही मैं उनसे इतना खुल गया। पर इसमें अचरज की बात वास्तव में नहीं थी। सामने वाले को इस तरह उसके अपने स्वभाव से मैं उन्मुक्त कर देना वात्स्यायन जी के व्यक्तित्व की विशेषता थी, जिसका मुझे निरंतर उसी तरह अनुभव होता रहा उस पहली छाप से लगाकर आज तक। अज्ञेय जी से मेरी दूसरी मुलाकात दिल्ली में हुई। मैंने अपने जीवन में औरों की सुविधा का इस कदर ख्याल रखने वाला व्यक्ति दूसरा नहीं देखा। उन्हें दूसरों के स्वभाव की अपने उसके दूसरेपन की अचूक परख थी। वे मुझे उस बार डिफेंस कॉलोनी के एक ऐसे आत्मीय परिवार में ले गए थे जहाँ मैं अनायास सहज हो सका था। वहाँ पेड़ पौधे से लगाकर आधुनिक भारतीय चित्रकला तक और हयवदन नाटक तथा उसके स्रोत वैताल पचीसी और टोमास मान के दी ट्रांसयूब्स हैड तक जाने के इतने विषयों पर घंटों बड़ी दिलचस्प बातचीत होती रहती थी। वहीं शायद इला जी से भी मेरी पहली भेंट हुई थी। यह भांपते हुए कि दिल्ली का भूगोल मेरे लिए परिचित है, वात्स्यायन जी ने मुझे खासी सैर कराई और फिर वे एक ऐसे बिंदु पर ले जाकर छोड़ा जहाँ से मॉडल टाउन मलेज के यहाँ के लिए सीधी बस यात्रा आसान थी। मैं सीधी से पन्ना आ गया था और वात्स्यायन जी जोधपुर चले गए थे। वे वहाँ नए नए खुले तुलनात्मक साहित्य विभाग में मुझे बुलाना चाहते थे। साक्षात्कार भी हो गया, नियुक्ति का आश्वासन भी मिल गया, किंतु वहाँ जाने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि वात्स्यायन जी स्वयं जोधपुर को छोड़कर चले आए। अपने 7 जून 1972 के पत्र में उन्होंने मुझको लिखा, मैं खाली बैठने के लिए जोधपुर नहीं आया। यह नहीं कि खाली नहीं बैठ सकता, वह तो अजगर से भी अधिक धैर्य से कर सकता हूँ, पर जब काम उठाया ही है तो मुफ्त की नहीं खा सकता, हजम नहीं होती। मैं अपनी कविताओं की कॉपी उनके पास छोड़ आया था और मुझे लौटाते हुए इसी पत्र में आगे उन्होंने लिखा था, इसमें मेरे निशान भी हैं। सही का मतलब अच्छी लगी और डबल सही का मतलब विशेष पसंद आई। कहीं कहीं हाशिए में क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है या कोई टीप होगी जो स्वयं प्रकाश होगी। आप अपना कविता संग्रह प्रेस के लिए तैयार कर लें तो बहुत अच्छा हो। मैं यहाँ इस प्रसंग का उल्लेख इसलिए करने को विवश हूँ कि इसके साथ जहाँ एक ओर मेरे साहित्यिक जीवन के सबसे उल्लासपूर्ण क्षणों की स्मृति जुड़ी है, वहीं एक कड़वी निराशा का संयोग भी। अज्ञेय मेरे प्रिय कवि थे। अपनी 75% कविताओं पर उनके काव्य विवेक की मुहर लगी देखकर मेरा उल्लसित होना स्वाभाविक ही था। मैंने अपने संग्रह की पांडुलिपि बड़े उत्साहपूर्वक तैयार की और अपनी अगली दिल्ली यात्रा में उन्हें सौंप भी आया। वह पांडुलिपि उनके पास 6 बरस पड़ी रही और उसे प्रकाशक नसीब नहीं हुआ। 1973 में मैं भोपाल आ गया था। अज्ञेय जी से दिल्ली आते जाते भेंट होती रहती थी। वे उन दिनों गोल्फ लिंक में रहते थे। उन्होंने नया प्रतीक निकाला और उसके सलाहकार में मुझे भी शामिल किया। इधर भोपाल में मेरे मित्र श्री अशोक वाजपेयी के संपादन में पूर्वग्रह नामक एक आलोचना की पत्रिका निकलने लगी थी, जिसके एक अंक में फिर वह तलवार डाल पर शीर्षक से नया प्रतीक की खासी खबर ली गई थी। स्वयं अशोक भी नयापति का वेशांग देख के पता नहीं क्यों इस बात से चकित और क्षुब्ध हुए थे कि मैं नया प्रतीक से जुड़ा हूँ। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, उन्होंने मुझसे कहा था। इतिहास की यह अवधारणा मेरे लिए नई तो थी ही, सहजगम्य भी नहीं थी। सहयोगी तो मैं अशोक जी का भी था, पहचान सीरीज में उन्होंने मेरी भी कविताओं की लघु पुस्तिका छापी थी। आलोचना के क्षेत्र में नए खमीर की जरूरत मुझे भी महसूस होती थी। उसे उठाने वालों में अशोक वाजपेयी तथा मलय जैसे लेखक मुझे अपने समान धर्मा ही लगते थे। भले ही विचारों के स्तर पर हमें एक रूपता न हो, यहाँ यह स्वीकारने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि अपने साहित्यिक परिवेश की कई सारी बातों को लेकर मैं खुद ही बहुत स्पष्ट नहीं था। बहरहाल अज्ञेयसरी के सतत विकासशील कवि चिंतक तथा सांस्कृतिक व्यक्तित्व की अप्रासंगिकता स्वतः सिद्ध मान ली जाए, यह बात किसी तरह मेरे गले उतरने वाली नहीं थी। न तो मेरा साहित्य विवेक और न सहज विवेक ही इसकी अनुमति दे सकता था। नया प्रतीक में मैं बराबर लिख रहा था और मेरा लेखन, विशेषकर मेरे निबंध व उपन्यास अंश वात्स्यायन जी को पसंद आते रहे, किंतु आलोचनात्मक चीजें अपेक्षाकृत कम छपी और जो छपी थी छपी भी वात्स्यायन जी के ही आग्रह पर। वे लगता है उन्हें कुछ खास जमी नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर यही प्रतीत होता है कि आलोचनात्मक विचार के स्तर पर जिस संवाद और सहयोग की अपेक्षा वात्स्यायन जी को मुझसे मन ही मन रही होगी, वह मैं उन दिनों पूरी नहीं कर पाया। इसका पता मुझे भी तभी चला जब अपने एक पत्र में उन्होंने मुझे उलाना दिया कि मैं सलाह तो उन्हें देता हूँ और लेख ऐसी पत्रिकाओं को जिनके कारण साहित्यिक पत्रकारिता पर सबसे अधिक संकट आता है, उनके इस तर्क को जितनी स्पष्टता से मैं आज देख और समझ सकता हूँ उतना तब नहीं समझ सका था। परिस्थितिवश मिलना ही बहुत कम होता था, चिट्ठी पत्री से बात बनती नहीं थी। मेरी प्रश्नानुकूलता मुझे ऐसी में यही लगता उन्हें उस तरह छू ही नहीं रही है जिस तरह मलया या अशोक या निर्मली को। गांधी शांति प्रतिष्ठान के कमरे में जहाँ एवरीमैन का संपादकीय कार्यालय था, वात्स्यायन जी ने एक दोपहर मुझसे कहा, क्या आपको इसमें कोई अनुचित नहीं दिखता कि सरकारी संस्थान से आलोचना की पत्रिका निकले? मुझे गहरी सोच में पड़ा देख उन्होंने आगे यह भी जोड़ा, खुद अशोक जी भी यदि वे प्रशासकीय सेवा में न होते तो क्या यह प्रश्न उनके लिए भी उपेक्षणीय होता? प्रश्न मेरे लिए भी उपेक्षणीय कदापि नहीं था और मैंने उसका जो उत्तर दिया वह स्वयं मेरे लिए पूरी तरह आश्वस्तिकर नहीं था। मेरा कहना था कि साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह समाज के स्वतः स्फूर्त पहल क्षीण होती जा रही है, तो इस स्थिति के लिए स्वयं लेखक कहाँ तक जिम्मेदार है? इतना बड़ा हिंदी प्रदेश दो ढंग की साहित्यिक पत्रिकाओं को भी जिंदा नहीं रख पाता। ऐसी हालत में अगर प्रदेशों को अकादमियों के जरिए ही सही कुछ अच्छा काम होने की संभावना बनती दिखती है तो उसमें सहयोग करना आरंभ दूषित ही क्यों मान लिया जाए? आखिर ये अकादमियाँ हैं किस लिए? एक सापेक्षिक स्वायत्तता भी उनकी है ही, फिर क्या काम करने वाले अधिकारी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर आश्वस्त हो चुकने के बाद यह सैद्धांतिक संकट भी कुछ कम नहीं हो जाता, खासकर जब वो अधिकारी अशोक वाजपेयी की तरह दिमागी तौर पर खुला हुआ हो और स्वयं एक संवेदनशील लेखक हो? मेरे इस उत्तर पर अज्ञेय जी मुस्कुराए और कहने लगे, लेखक होने से यह संकट उल्टे बढ़ भी तो सकता है, और थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लें तो इसकी क्या गारंटी है कि कब कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस पद का दुरुपयोग नहीं करेगा? मैंने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर मैं तो नहीं समझता, मेरा अपना स्वतंत्र विवेक ऐसी परिस्थिति में कुंठित हो जा सकता है। दूसरे की तो बात ही क्या, कल अगर अशोक के साथ ही गंभीर मतभेद की नौबत आ जाती है तो मुझे उनके साथ भी असहयोग करने में कतई कोई दुविधा न होगी। और सचमुच ऐसा सहयोग शीघ्र ही घटित हुआ भी। आपातकाल के दौरान अशोक जी ने एक लेखक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका मुझे बहिष्कार करना पड़ा, गंभीर सैद्धांतिक मतभेदों के फलस्वरूप ही। गोल्फ लिंक वाले मकान की एक उजली सुबह वात्स्यायन जी अपनी बैठक में तख्त पर लेटे लेटे अखबार देख रहे थे। एकाएक मैं उनसे पूछ बैठा, वत्स्यायन जी, इधर गांधी जी को लेकर आपकी दृष्टि में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया दिखता है। आप तो युवावस्था में उनके घोर विरोधी रहे थे, बताइए ना आपका रुख कैसे और क्यों बदला? वत्स्यायन जी ने चौंक कर मेरी ओर देखा और धीरे से उठकर बैठ गए। उनकी वह मुखमुद्रा, उनकी आंखों की वह दीप्ति मैं कभी नहीं भूल सकता, उनकी वह आवाज़ भी। रमेश जी सुनिए, कोई तर्क वर्क नहीं, एक घटना। मैं दिल्ली की एक अंधेरी सी गली से गुजर रहा था, अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी। सामने एक दुकान थी जहाँ कुछ लोग खड़े रेडियो सुन रहे थे। वह आवाज़ रेडियो से ही आ रही थी, पर मैं तो जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। उस आवाज़ ने मुझे पकड़ लिया, लगा वह मुझे को संबोधित है, मेरे ही लिए है, मेरे ही भीतर से आ रही है। पता नहीं कितनी देर मैं उसी तरह जड़वत खड़ा रहा। वह गांधी जी की आवाज़ थी। वत्स्यायन जी सहसा चुप हो गए, उन्हें एक टक ताकता हुआ मैं भी बड़ी देर तक कुछ नहीं बोल सका। वत्स्यायन जी के बारे में मुझे याद नहीं पड़ता अपनी कच्ची उम्र के दौरान मैंने कभी किसी लेखक को अच्छा बोलते सुना हो। पहला विशेषण जो मेरे कस्बे के एक लेखक के मुँह से मैंने सुना था वह था अमेरिकी एजेंट। दूसरी उन दिनों की जो याद है वह अल्मोड़ा के कॉलेज के हाल में हुई एक मीटिंग की, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे कुछ छात्र और कुछ वामपंथी लेखक मौजूद थे, जिसमें इंडियन लिटरेचर नाम की पत्रिका में छपे अज्ञेय के लेख को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। उन भाषणों में से मन पर यही छाप पड़ी थी कि अज्ञेय से अधिक खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता हिंदी साहित्य में। यह शायद 56-57 के आसपास की घटना होगी, जब मैंने लिखना छपना आरंभ तक नहीं किया था। उसके बाद भी सन 65-66 तक जो एकमात्र सुभाषित मैंने किसी लेखक के मुंह से सुना वह यह था कि अज्ञेय हिंदी साहित्य में अंगद का पांव है। रीज भजौ चाहे खींजी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस सुभाषित का जन्मस्थल इलाहाबाद का काफ़ी हाउस था। इसी के वजन का जो दूसरा सुभाषित मुझे इस वक्त याद आ रहा है वह स्वयं अज्ञेय जी का लिखा हुआ है। अज्ञेय हिंदी के हाथी का दिखाने का दांत है, एक्सपोर्ट कमोडिटी। अज्ञेय की बौद्धिकता, आधुनिकता, जीवन और विचार की इतनी गहरी अवनति और दीक्षा, और उसी के समानांतर मानो उसी की चुनौती से जागे हुई भारतीय परंपरा के शक्ति स्रोतों की अनुसंधित्सा और पहचान। ये मुझसे कह रहे हैं विद्यानिवास जी के बारे में। साधारणतः इस कंप्यूटर को साधने में लोग जितने महीने लगा देते हैं, विद्यानिवास ने उसे उतने ही दिनों में पकड़ लिया। कुशाग्र बुद्धि की कसौटी पर कितने लोग खड़े उतरेंगे, किंतु दूसरी ओर आदिम और वन्य के प्रति अज्ञेय का दुर्निवार्य आकर्षक संस्कृति के भीतर प्रकृति और प्रकृति के भीतर संस्कृति को पाने की वह जीवनव्यापी छटपटाहट याद आता है। शिखर एक जीवनी का वह अंतर्द्वंद, किंतु व्यक्ति जीवन की कितनी बड़ी गांठ है वह शिक्षा। अगर वह निरा असभ्य होता, जंगली पशु होता, शेखर भी तो बुद्धिजीवी ही था ना। 20वीं सदी के इस भारतीय कवि की मनोरचना अनिवार्यता विरोधाभासी है, किंतु इन अंतर्विरोधों इन तत्वों का सामंजस्य कर सकने की विकट चुनौती से स्वीकार है। एक बूंद सहसा उछली में कार्ल यास्पर्स का चेहरा देखकर उसे लगता है हियर इज अ मैन हु इज एट पीस विद हिमसेल्फ। मगर यह स्पष्ट तो दार्शनिक है, एक दार्शनिक की अपेक्षा एक कवि के लिए एट पीस विद हिमसेल्फ की आदर्श स्थिति को पहुंचना या ज़्यादा कठिन नहीं है। कवि का सच तो रागदीप्त और रागोत्तीर्ण सच होना चाहिए ना, पर इस जटिल समाज और जटिल युग में रागोत्तीर्ण सच की उपलब्धि इतनी आसान है क्या? अज्ञेय को अच्छी तरह मालूम है कि पुरखों के लिए साहित्य रचना एक स्वस्थ व्यक्ति की आनंद साधना ही थी, और यह आदर्श उन्हें भी काम्य है। सारी कठिनाइयों के बावजूद यह पश्चिम के आधुनिकतावादी पूर्वग्रहों की ओट लेकर या पश्चिम के साहित्य और मनोविज्ञान की ओट लेकर अपनी समस्या का आसान परोपजीवी हल नहीं पा लेना चाहते। उनका शिवत्व बोध और उनका सौंदर्य बोध अलग थलग नहीं पड़ना चाहते। कला बनाम नैतिकता के पश्चिमी झगड़े को दोहराने से या एक की कीमत पर दूसरे को वसूल लेने से संतुष्ट नहीं हो सकते। चेतना का संस्कार उनके लिए मनुष्य होने की बुनियादी शर्त है, किंतु चेतना और अवचेतन के बीच अनवरत विग्रह की व्याख्या को वे नहीं स्वीकार करते। वे मन के दोनों खंडों के बीच मैत्री चाहते हैं और इसी हिसाब से जीवन को और रचना को भी साधना चाहते हैं, बल्कि रचना उनके लिए इस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का साधन भी है। अपने आखिरी पत्र में वे लिखते हैं, केंद्रीय प्रश्न यह है कि किसी भी संस्कृति में इस तर्कातीत का क्या स्थान है। यह एक विकट प्रश्न है और बड़ी कीमत वसूलने वाला। सांस्कृतिक जीवन की खोज भी आखिर किताबों से नहीं, इसी सांचे ढले समाज की जीवनधारा के भीतर बैठकर ही तो की जा सकेगी। अच्छी कुंठारहित इकाई की उपलब्धि भी क्या केवल व्यक्ति जीवन की गांठों को अपने स्वाधीन आत्मनिर्णयों से धुलाने काटने की कोशिशों से हो जाती है? हो भी जाती हो तो उसकी भी सार्थकता का मूल्य अनंत क्या है? अकेले के आत्मदान में इस आत्मदान की प्रक्रिया और परिणति क्या होगी? क्या वह हमें अंततः उन अंतिम प्रश्नों के सामने ले जाकर खड़ा नहीं कर देगी जो अंततः धार्मिक आयाम के प्रश्न और किसी भी संस्कृति की कैसी भी परिभाषा को अतिक्रांत करने वाले। शाश्वती में एक जगह कहीं आता है कि गांधी जी ही असली क्रांतिकारी और असली भारती थी, क्योंकि उनमें सबको साथ लेकर चलने की प्रतिभा थी। पता नहीं अज्ञेय के बारे में जो धारणाएं हिंदी लेखकों के बीच प्रचारित हैं उनके पीछे स्वयं अज्ञेय के उस दौर के व्यक्तित्व और आचरण का कितना आधार है, जिसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव मुझे नहीं है। किंतु जिस अज्ञेय को मैंने पिछले कई वर्षों के दौरान वत्सल निधि द्वारा आयोजित लेखक शिविरों में या सांस्कृतिक यात्राओं में कार्यरत देखा है, वह अपने तरीके से सबको साथ लेकर चलने की तत्परता और क्षमता का उदाहरण था। अगर साहित्य में सबको साथ लेकर चलने का कोई अर्थ होता हो तो आत्मशिक्षण के मूल्य पर, साहित्य की संप्रेषण धर्मिता पर, कवि की अपना समाज खुद बनाने की जरूरत पर इतना बल अज्ञेय के यहाँ यूं ही नहीं दिया गया है। वे समान धर्माओं पर विश्वास करना चाहते थे और भरसक उन्हीं के सलाह से काम भी करना चाहते थे। उसी एकांत में घर हो जहाँ पर सभी आए मैं न जाऊँ आऊँ, यह उनके लिए कोरा आदर्श या कोरी कविताएं भर नहीं थी। एक अनवरत आत्मसंघर्ष और अनवरत आत्मदान की ही तो उत्तरोत्तर सफल होती जाती प्रक्रिया थी। इतना जरूर है कि स्वयं घोर आत्मानुशासन और कर्म कौशल का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे औरों से भी वैसी ही अपेक्षा रखते थे। इस अपेक्षा का दबाव भी शायद उनकी उपस्थिति में लोगों को असुविधाजनक लगता रहा हो। देश और समाज का जैसा दर्द उनको था, प्रत्यासन समस्याओं और चुनौतियों की जैसी समझ और पकड़ उनमें थी, वैसी कम ही लेखकों में होगी। वत्सल निधि के लेखक शिविरों में विचार के लिए जो विषय जो मुद्दे उठाए वे आज के सबसे विचारणीय मुद्दे हैं। फिर भी क्या कारण था कि कवि और उसके समाज के सहयोग के फलस्वरूप ही जो ठोस योगदान इन शिविरों के माध्यम से हुआ और बाकायदा पुस्तकाकार छपकर सामने भी आता रहा, उसकी हमारे साहित्य जगत में सुनियोजित ढंग से उपेक्षा की जाती रही। क्या यह सच नहीं है? जो आदमी कवि कर्म को सामाजिक कर्म का एवजी मानने से इनकार करता था, जो विपेक निर्दिष्ट रास्ते पर चलने की जोखिम से कतराने वाले बुद्धिजीवी को बुद्धिजीवी मानने को तैयार नहीं था, उसकी इधर की सारी मूल्यवान कर्मठता के प्रति जिस तरह की उदासीनता या मूल्यमूढ़ प्रतिक्रियाएं इसी लेखक बिरादरी में प्रकट होती रहीं, उसके क्या हम सभी साक्षी नहीं? जीवित विचार और कर्म का कुत्सामय तिरस्कार या मरणोत्तर उदारता का भावुक विस्फोट, क्या यही हिंदी प्रदेश का स्वाभाविक चरित्र है? क्या यही हिंदी की वह सात्विक कठोरता है जिसका सबसे अधिक अभिमान स्वयं अज्ञेय को था और इसकी आजीवन साधना ही उनका लेखन कर्म? वाग्वीरों की भलाई अपने यहाँ क्या कमी है? ये तो इसे सचमुच संवाद कहा जाना चाहिए, रचना कर्म की वास्तविक समस्याओं के बारे में अथवा देश और समाज के सम्मुख प्रस्तुत चुनौतियों को लेकर। उस धरातल पर संवाद की आवश्यकता सबसे ज़्यादा अगर किसी को होती भी तो वात्स्यायन जी को। युवतर पीढ़ी के लेखकों को लेकर उनकी चिंता का रूप निश्चय ही वह नहीं था जो रचनात्मक प्रतिभा को विवेक की बजाय मोचा बुद्धि से चलाने वालों में पाया जाता है। किंतु मेरी स्वाधीनता सबकी स्वाधीनता की अन्वेषी अज्ञेय की संवादोन्मुख समकालीनता और प्रासंगिकता का ठोस प्रमाण न केवल पिछले कई वर्षों के चिंतन में उपलब्ध है, बल्कि इसे उनके अध्ययन कक्ष में और उनके द्वारा आयोजित तमाम लेखक शिविरों में भी बराबर देखा जा सकता था। वात्स्यायन जी के इस पक्ष का सर्वप्रथम परिचय मुझे जयपुर विश्वविद्यालय में उन्हीं के द्वारा निर्देशित एक लेखक शिविर में मिला था, जिसमें उन्होंने रिसोर्स पर्सन के रूप में मुझे और निर्मल वर्मा को आमंत्रित किया था। एक पूर्व प्रत्याशित किंतु मनोरंजक विघ्न के बावजूद, जिसका मेरे द्वारा किया गया आकुली किलात नामकरण वात्स्यायन जी को बहुत दिनों तक याद रहा। यह शिविर काफ़ी सफल रहा था और उसके निमित्त से कुछ संभावनाशील युवा लेखकों की पहचान भी संभव हो सकी थी। वह प्रसंग मेरे लिए इस कारण भी स्मरणीय हो गया है कि वहाँ से बस में लौटते हुए रास्ते भर वात्स्यायन जी से मानवेंद्र नाथ राय और एलन राय के बारे में कई मार्मिक संस्मरण सुने थे। रैशनलिस्ट राय व्यक्तिगत संबंधों को अपने विचार दर्शन में जगह देने को तैयार नहीं थे और अज्ञेय जी से उनकी अक्सर बड़ी तेज तकरार हो जाती थी। राय या चर्चा छेड़ते ही बेहद उत्तेजित हो जाते थे, इस कदर कि जब वात्स्यायन जी आगरे के अस्पताल में उनका हाल पूछने गए तो एलन ने उन्हें रोक कर कहा, प्लीज़ वात्स्यायन, तुम्हें देखते ही वे बहस पर उतारू हो जाते हैं और यह ठीक नहीं होगा। वात्स्यायन ने उन्हें बहुतेरा समझाया कि वे मुँह तक नहीं खोलेंगे तो राय इससे बहस करेंगे, मगर एलन कहाँ मानने वाली, बोली, तुम्हारी छाया है उन्हें उत्तेजित करने को काफ़ी है। बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। वात्स्यायन जी को देखते ही जैसे ही राय कुछ बोलने को हुए, वात्स्यायन जी ने उन्हें वरसते हुए एलन से किया गया वादा दोहराया और कहा, अब इसके बाद भी आप पर्सनल रिलेशन पर बहस करेंगे तो समझ लीजिए हमारे पर्सनल रिलेशन बिगड़ जाएंगे। राय ने झुंझुला कर उत्तर दिया, तब तो मैं ज़रूर बहस करूँगा, क्योंकि बहस न करने का मतलब होगा मैं एक ऐसी चीज़ के बिगड़ने की परवाह कर रहा हूँ जिसका अस्तित्व ही मैं नहीं मानता। तुम्हारी चालाकी मैं सब समझता हूँ। मगर यह कहकर राय फिर सचमुच उस दिन बहस में नहीं उतरे, खामोशी रहे। वात्स्यायन जी ने मुझे बताया कि राय का कठोर बुद्धिवाद उन्हें ऐसी किसी भी चीज़ को स्वीकारने नहीं देता था जिसमें रैशनल की तनिक भी गंध हो, किंतु उनका ख्याल था कि अपने अंतिम दिनों में राय का रैशनलिस्ट थोड़ा हिल जरूर गया था। दरअसल इसे लेकर बहस में उनकी असामान्य उत्तेजना ही इसका पूर्व लक्षण थी। वह एक तरह की अपराजेय व्यवस्था थी, एक चरम बुद्धिजीवी की अनिवार्य विडम्बना, अपने ही अनुभव के सत्य को नकारने की लाचारी। कवि येट्स की एक प्रसिद्ध कविता है, मेरी पुत्री के लिए एक प्रार्थना, जिसमें एक जगह कवि कहता है, बौद्धिक घृणा से अधिक आत्मघाती और जीवन द्रोही बुराई कोई हो ही नहीं सकती। कभी कभी लगता है हिंदी का वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य इसी का नमूना है। वात्स्यायन जी मूलतः तीव्र भावावेगों के व्यक्ति थे, उनकी पसंद नापसंद बहुत स्पष्ट दिखाई देती थी और उनके कुछ जीवन सिद्धांत थे जिन्हें लेकर वे कभी समझौता नहीं कर सकते थे, किंतु इसके साथ साथ अपने गहरे नैतिक संवेदन और अचूक मात्रा ज्ञान के चलते वे कट्टर सिद्धांतवादी की विडम्बनाओं से उत्तरोत्तर उभरते गए होंगे। ऐसे इम्पल्सिव मगर नैष्ठिक बुद्धिजीवी की प्राकृतिक सांस्कृतिक ऊर्जा ही उसे वह संतुलन व लोच प्रदान करती है जो उसे उत्तरोत्तर उदाहरण बनाती है। उसे वह संवेदनशील अंतर्दृष्टि देती है जो किसी भी कोरे सिद्धांत से बड़ी चीज है, क्योंकि वह अंततः किसी के साथ भी अपने विरोध के साथ भी अन्याय होते नहीं देख सकती, उसके संकट के समय तटस्थ नहीं रह सकती। याद आता है एक दिन अचानक मेरे सामने उनके मुंह से यह उद्गार फूटा था, वेल इफ इट कम्स टू दैट आई कुड बी अ वेरी बीटर मैन इंडीड। पता नहीं किस प्रसंग में उन्होंने यह कहा था, किंतु शब्द यही थे, नहीं। वात्स्यायन जी जीवन से मिली सारी कटुता के बावजूद कटु नहीं हो सके, बल्कि उत्तरोत्तर सौम्य और प्रशांत आत्मा होते गए, क्योंकि सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध की उनकी जीवनव्यापी दोहरी साधना प्रारंभ से ही एकोन्मुख थी। अरसा पहले जब वे भोपाल पहली बार आए थे और मुझे सपरिवार अपना अतिथि बनाकर सांची उठा ले गए थे, उनके साथ दो दिन तक कुछ दिलचस्प साहित्येतर चर्चाएँ भी हुई थी, मसलन यही कि लेखकों को अपनी जीवनी स्वयं लिखनी चाहिए या नहीं। सांची के वेटिंग रूम में गाड़ी का इंतजार करते हुए वात्स्यायन जी ने पता नहीं किस प्रेरणा से अचानक मुझसे प्रश्न किया था, कैन यू पॉजिट अ रिलीजन विदाउट गॉड। मैंने उत्तर दिया था, वत्सायन जी आप सांची में सवाल पूछ रहे हैं। यूं तो अपने यहाँ दो दो महान धर्म बिना ईश्वर की अवधारणा के फलते फूलते रहे, मगर वे आत्मा और पुनर्जन्म में तो विश्वास करते ही थे। अब यूं तो अद्वैत वेदांत में भी ईसाइयों यहूदियों के जैसे पर्सनल गार्ड वाली सुरक्षा कहाँ है, मगर यह अकारण नहीं है कि प्रतिष्ठा तो भारतीय मन में भागवत धर्म की ही हुई। नहीं तो बताइए, हीन यान को महायान में बदलने की क्या जरूरत थी, भक्ति आंदोलन की ही क्या जरूरत थी। वात्स्यायन जी कुछ बोले नहीं, सिर्फ अनुमोदन में सिर हिलाया। उन्हें मेरी बात ठीक ही लगी ऐसा प्रतीत हुआ। आज जब मुझे उनकी भंगिमा याद आ रही है तो उसके साथ साथ उनकी कविता भी, पंक्तियाँ भी जाने कैसे अचानक मन में घुमंडने लगी है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के दुधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञास प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। कैसा विचित्र संयोग है कि वात्स्यायन जी पिछले 3 महीनों के भीतर 3 बार भोपाल आए। पहली बार भारत भवन द्वारा आयोजित आलोचक त्रैवार्षिकी का उद्घाटन करने, दूसरी बार अपने प्रिय रंगश्री लिटिल बैले ट्रप की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने, और तीसरी बार अभी अभी संपन्न कवि भारती के काव्य पाठ में। आलोचक त्रैवार्षिकी में विचार का सामान्य विषय था साहित्य और समाज, जिसका उद्घाटन करते हुए वात्स्यायन जी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से मैंने सिवाय इस विषय का उद्घाटन करते रहने के और किया क्या है। उन्होंने मजे मजे में यह भी कहा कि पिछले 3 वर्षों से जिस लेखक के अप्रासंगिक हो जाने की घोषणा इतने जोर शोर से की जा रही है, उसकी अप्रासंगिकता लगता है अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। अब इसमें कितना प्रयास था और कितना परमार्थ, ये तो हमारे मात्रा ज्ञान संपन्न आलोचक ही बता सकते हैं। अज्ञेय की भारतीयता और आधुनिकता का निपटारा भी वही कर सकते हैं। हम तो यहाँ सिर्फ अज्ञेय कि अभी हाल में उन्हीं के मुख से सुनी कविता की कुछ पंक्तियाँ ही दोहरा सकते हैं। चाय पीते हुए मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छी बात नहीं है पिताओं के बारे में सोचना, अपनी कलई खुल जाती है। कितनी दूर जाना होता है पिता से, पिता जैसा होने के लिए। क्या इस कविता के मर्म और तर्क को वैसे भी इतिहासवाद या इतिहास अंतावाद से जुटलाया जा सकता है, और क्या यही मर्म और तर्क इसी कवि के भी समूचे विकास क्रम और समूची जीवन यात्रा का भी मर्म और तर्क नहीं लग उठता। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था, वात्स्यायन जी मेरे लिए अभी तक इस संस्मरण के विषय बन ही नहीं पाए हैं। यह सब लिखते हुए उनकी अनुपस्थिति के तथ्य को मानो मैं अभी अपनी निपटता के साथ अनुभव ही नहीं कर पा रहा हूँ। वात्स्यायन जी ने एक बार मुझसे प्रेजेंस शब्द का हिंदी पर्याय पूछा था और मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। उन्हें यह शब्द बहुत प्रिय था और मेरी यह शायद और भी बहुत से लोग होंगे जिनके लिए इसमें उनके व्यक्तित्व की भी एक मार्मिक परिभाषा नहीं थोगी। क्या इसीलिए मैंने लिखने से पहले यह शीर्षक टांक लिया था, अंकुरित धारा से क्षमा, व्योम से झरी रूपहली करुणा, सरिसागर सोते निर्झर सा उमड़े जीवन, कहीं नहीं है मरना। किंतु यह भी तो वही लिख सकता था जो जानता था और स्वीकार कर सकता था कि नहीं, फिर आना नहीं होगा। अंततः क्या जीवन के स्वीकार की गुणवत्ता भी मृत्यु के स्वीकार की गुणवत्ता से जुड़ी हुई नहीं होती। शेखर से अपने अपने अजनबी तक और भग्न दूत से लगाकर अंतिम मरुस्थल श्रृंखला की कविताओं तक अज्ञेय का समूचा कृतित्व मानव लगातार यह प्रश्न पूछता और उसका उत्तर ढूंढता जान पड़ता है। शायद यही कारण है कि जितना भरपूर और गहरा जीवन उन्होंने जिया, उतना ही भरपूर कृतित्व भी रचा। यह उचित ही था कि उनकी कविताओं के संपूर्ण संकलन का नाम सदा नीरा रखा गया। सदा नीरा के तट पर वाल्मीकि नगर में ही तो उन्होंने अभी अभी अपना सबसे हाल का लेखक शिविर भी किया था। सदा नीरा हिंदी के उस महान साधक और कृति को हमारी पीढ़ी का प्रणाम। उस दिन साहित्य अकादमी के शोक सभा में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रघुवीर सहाय ने जब कहा कि यह श्रद्धांजलि नहीं वायदा है, तो यह विश्वास करने को जी उमड़ा था कि वे केवल अपनी नहीं एक पूरी परवर्ती पीढ़ी के मन की बात ही बोल रहे थे।